اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیج نمبر پڑھیں گے جی 290، لیکچر نمبر ہے جی 34. یہ 34 نمبر لیکچر ہم اس کا عنوان زمانے غیر متواتر علم الاسماء، علم الاسماء یا اسما، اسم سے تو اسما ہونا چاہیے. ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں زمانے حقیقی کیا ہے، زمانے غیر متواتر کیا ہے اور زمانے متواتر کیا ہے. یہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے خاص طور پہ پڑھا. میں نے اس میں یہ جو انفر کیا، جو بات ہم نے اخذ کی، وہ یہ تھی کہ زمانے کی یہ جو تین حالتیں جن سے ہمارا شعور واقف اور آشنا ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، اس کے بجائے روحانیت ہمیں زمانے حقیقی، زمانے غیر متواتر اور زمانے متواتر کی بات بتا رہی ہے. یعنی ہمارا جو کانسیپٹ آف ٹائم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو درست انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شعوری نظام میں ماضی، مستقبل اور حال چلے گا اور چلتا ہے، لیکن لاشعوری نظام میں یہ ماضی، مستقبل اور حال کوئی معنی نہیں رکھتا. وہاں زمانے کا صرف ایک ہی طریقہ، ایک ہی طرز ہے اور وہ ہے ماضی. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانے حقیقی وہ ایک لمحہ ہے جس لمحے میں اللہ رب کریم نے ارادہ فرمایا کائنات کو تخلیق کرنے کا، اور وہ لمحہ حقیقی کو قرآن نے دہر کہا ہے. اس کے بعد پوری کائنات کو جو ٹائم محیط ہے اس کو قرآن نے وقت کہا ہے، اور کسی نو کے لیے جو ٹائم مختص ہے اس کو قرآن اثر کہہ رہا ہے، اور کسی فرد کے لیے جو ٹائم کی ڈیوریشن یا وقفہ ہے اس کو قرآن نے ہین کہا ہے. تو یہ قرآن ہمیں چار دائروں سے، وقت کے چار نہروں کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ نہر تسوید میں جو وقت کا وقفہ ہے وہ دہر کہلاتا ہے، نہر تجرید میں جو وقت کا وقفہ ہے، وقفہ لفظ وقفہ، وہ وقت کہلاتا ہے. اور اسی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے، لی ما اللہ وقتن، میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں، یا اللہ وقت میں میرے ساتھ ہے. تو یہ چار زاویے وقت کے قرآن نے بتائے، دہر، وقت اور اثر اور ہین. ہین انفرادی، ایک انڈیویجول کی ٹوٹل جو زندگی ہے اس کے ابتدا سے انتہا تک، اس کو قرآن ہین کہہ رہا ہے. روحانیت ہمیں یہ طرزیں بتا رہی ہے کہ ایک زمانے حقیقی ہے، پھر زمانے غیر متواتر ہے، یعنی نان سیریل ٹائم. یہ نان سیریل ٹائم کو کائنات کی سطح پہ یا عالم ملکوت کہا گیا، اسی کو عالم کیا کہا گیا، عالم غیب کہا گیا. ایک ہے نا عالم فطرت، عالم فطرت اور عالم شہادت. پھر اسی کو وضاحت کی گئی کہ یہ سارا سلسلہ اصل میں حواس، پھر منقسم حواس اور غیر منقسم حواس، یہ چار تین درجے یہ چل رہے ہیں. تو یہ جو تین چیزیں اور چار چیزیں، ان کا فرق بھی آپ کو سمجھنا ہے. کہ ایک طرف قرآن حکیم ہمیں دہر، وقت، اثر اور ہین سے متعارف کرا رہا ہے، وہ وقفے ہیں، وہ وقفے کی ڈیفینیشن میں ہیں، وہ آگے آئے گی. تو ہم آج یہ جو لیکچر پڑھنے لگے ہیں 34 نمبر لیکچر، زمانے غیر متواتر. جب ہم قرآن میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور پوری کائنات کی زندگی عالم فطرت کے ساتھ قائم ہے. عالم فطرت زمانے متواتر ہے، اور عالم غیب زمانے غیر متواتر ہے. زمانے حقیقی میں لمحات غیر متغیر ہیں، یہ فرق دیکھ لیں. زمانے حقیقی میں لمحات میں تغیر نہیں ہے، جبکہ اور یہی غیر متغیر لمحات ازل سے ابد کو محیط ہیں، ازل سے ابد تک محیط ہیں. یہ غیر متغیر لمحات کو علم کی ہستی بھی قرار دیا گیا ہے. یہ ہے علم کی ہستی کی اصل، کہ علم اصل میں وہ غیر متغیر لمحات ہیں جو زمانے حقیقی ہیں. اور علم کی ہستی سے مراد یہ ہے کہ علم کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی حیثیت صرف لفظ کی ہے، بلکہ علم بحیثیت علم ایک ہستی ہے. یہ غور کریں کہ ہمارے شعوری نظام فکر کی ڈیفینیشنز یا جو تعریفیں ہیں اس سے حضور مرشد کریم کتنا ہٹ کر ایک بات بتا رہے ہیں. آپ اگر ان الفاظ کو محض الفاظ سمجھ کے بات پڑھیں گے تو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اس کے پیچھے تصورات کو درست کرنا ہے. ہمیں اپنے تصورات کو مرشد کریم کے بتائے ہوئے تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. ہمیں علم کو محض الفاظ کا گورکھ دھندا سمجھنے سے باز آنا ہے، علم کو ایک ہستی ماننا ہے. کیونکہ علم کی ہستی کا ماخذ جو ہے وہ غیر متغیر، دیکھیں یہاں پہ زمانے غیر متواتر نہیں کہا، یہاں پہ غیر متغیر لمحات کہا ہے. یعنی یہ زمانے حقیقی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ترکیب استعمال کی گئی ہے. ترکیب کا مطلب یہاں پہ طریقہ یا الفاظ کی بناوٹ. علم کی ہستی کا قیام زمانے غیر متواتر میں، اب علم کی ہستی کیا ہے؟ وہ زمانے حقیقی ہے. اور علم کی ہستی کا قیام زمانے غیر متواتر میں، اب علم کی ہستی دوسری ہستیوں کی طرح ادراک بھی رکھتی ہے. میں آپ کو اس کی مثالیں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے جملہ پورا کر لوں. ہم جب زمانے متواتر یا زمانے غیر متواتر کا تذکرہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کی ہستی نے ہمیں متغیر اور غیر متغیر لمحات کا علم عطا کیا ہے. میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، علم کی ہستی دوسری ہستیوں کی طرح ادراک بھی رکھتی ہے. یعنی علم ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دیگر ہستیوں کی طرح، ہست کہتے ہیں ہونے والی چیز جو ہے، وہ ایسی چیز ہے جو اپنا ادراک بھی رکھتی ہے، ادراک رکھتی ہے. یعنی اسے پتہ میں کیا ہوں، उसे पता है कि मैं क्या हूं, कितनी हूं, कहां तक हूं, उसको ये सारा इदराक है। इल्म एक ऐसी हस्ती है। अब आप गौर करें कि हर बंदे को खुद मालूम है कि मैं क्या हूं, मैं कितना काबिल हूं, मैं कितना अच्छा बच्चा हूं, या मैं कितना बीबा बच्चा हूं, या कितना बाबा बच्चा हूं, सबको पता है। तो ये बात जो है, ये मालूम होना इदराक है। और ये हर, मतलब कि हर बंदे को मालूम है। तो इल्म की हस्ती जो है, ये दूसरी हस्तियों की तरह, अब दूसरी हस्तियां क्या क्या हैं, मसलन जिंदगी एक हस्ती है, इसी तरह एक फर्द जो है वो भी एक हस्ती है, और एक नौ है वो भी एक हस्ती है, यानी है। तो जो भी चीज है वो इदराक रखती है, तो इल्म भी इदराक रखता है अपना। और ये जो हम जमाने मतवातर और गैर मतवातर का तस्करा करते हैं, यानी सीरियल और नॉन सीरियल टाइम की बातें करते हैं, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इल्म की हस्ती ने हमें मुतगैर और फिर गैर मुतगैर लम्हात का इल्म अता किया। यानी ये जो हमें मतवातर और गैर मतवातर का तस्करा कर रहे हैं, तो असल में ये मुतगैर और गैर मुतगैर लम्हात का इल्म हमें मिल रहा है। इसलिए हम जमाने मतवातर और जमाने गैर मतवातर की बात, यानी कि हम जिन हवासों में तकसीम होते हैं, उनकी बात जानना इल्म है। और हमने इल्म को क्या किया हुआ है कि जी इसने 10 किताबें पढ़ ली तो ये आलिम हो गया। यहाँ पे आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि इल्म असल में क्या है। अगर आपको मुनकसिम और गैर मुनकसिम हवास का इल्म हासिल है, अगर आपको मुतगैर और गैर मुतगैर लम्हात का इल्म हासिल हुआ, तो कहेंगे कि आपका इल्म है। वरना वरना आप उलमा भी हैं तो फुजला भी हो सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं रख सकते। ये रूहानियत के इस पैराग्राफ में, इस पैराए में तो यही मतलब बनता है कि अगर हमें हवास और उसके मुनकसिम और उसके गैर मुनकसिम होने का पता है, अगर हमें लम्हात का पूरा इदराक हासिल है, और उसके तगैयर और उसके लामतगैर दोनों हालतों से हम आगाह हैं, और हम मुनकसिम और गैर मुनकसिम हवास से काम लेना जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस बंदे को इल्म हासिल है। यानी इसके अंदर इल्म की हस्ती अपना जलवा दिखा रही है। अब लम्हा हकीकी में बताया गया है कि लम्हा गैर मुतगैर है। लम्हा हकीकी का जब तस्करा हुआ था तो ये बताया गया था कि लम्हा गैर मुतगैर है, और उसी गैर मुतगैर लम्हे के औसाफ मालूम करने में इल्म की हस्ती कोशां रहती है। ये है इल्म की हस्ती का असल रोल। क्या? कि इल्म की हस्ती गैर मुतगैर लम्हे के औसाफ मालूम करने, औसाफ उसके वसफ, उसकी सिफात, किसके, वो जो गैर मुतगैर लम्हा है, उसके औसाफ मालूम करने में कोशां रहती है, कोशिश में लगी रहती है। यानी हमारे अंदर ये जो जुस्तजू है, ये जो तलाश है, ये इल्म की हस्ती का सबूत है। जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते, तो जिस चीज को हम जान रहे हैं उसको हम फिर कितना जान पाते हैं, कितना हम अपनी कोशिश को बढ़ाते हैं, वो सारा एक अलहदा निजाम है। इल्म की हस्ती की ये कोशिश ला तनाहियत से तनाहियत की तरफ सफर है। ये है असल में कि ला तनाहियत की चीजों को वो तनाहियत में समेट रही है। ये है इल्म की हस्ती की कोशिश। इल्म की हस्ती की ये कोशिश ला तनाहियत से तनाहियत की तरफ सफर है, और ला तनाहियत का जो लम्हा तनाहियत की तरफ सफर करता है वो नूरे मुरक्कब का लम्हा है। ये देखिए नूरे मुरक्कब का लम्हा, ये बहुत तवज्जो से इस बात को समझना, फिर इसको मुशाहदाती दर्जे तक ले जाना। क्या महज एक बार इसकी रीडिंग कर लेने से हम इस दर्जे पे पहुंच सकते हैं? आंसर इज नो। इसका वाहिद तरीका ये है कि ये जो हम पढ़ते हैं इसमें यकीन कीजिए एक एक जुमला पढ़कर आपको एक एक मुराकबा करके समझने की कोशिश करनी है। यानी कि कम से कम एक आधा घंटा एक एक जुमले को दें कि वो अंदर डिसॉल्व हो सके, हमारे जहन नशीन हो सके। क्योंकि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मुशाहदाती तर्जों तक पहुंचने का बहुत आसान गुर बता दिया। अब जैसे हम ये जुमला पढ़ रहे हैं कि इल्म की हस्ती की ये कोशिश ला तनाहियत से तनाहियत की तरफ सफर है, यानी इल्म क्या कर रहा है कि वो चीजों को ला तनाहियत से अखज करके तनाहियत में, यानी जिस चीजों की हदें हैं, जिसकी कोई इंतहा है, वहां पे उसको समेट रहा है। और जो लम्हा ला तनाहियत से तनाहियत की तरफ सफर करता है वो असल में नूरे मुरक्कब का लम्हा है। नूरे मुरक्कब से आगे नस्मा बना, नस्मे की फिर नस्मे मुफरद है और नस्मे मुतलक, वो नस्मे मुरक्कब है। तो नूरे मुरक्कब जो है ये असल में क्या है? नूर कहते हैं ख्याल को। ख्याल जब मुरक्कब हालत में हो गया तो वो हो गया ला तनाहियत का वो लम्हा जो तनाहियत की तरफ बढ़ रहा है, यानी अभी उसकी हदें बन रही हैं। ये है नूरे मुरक्कब। लम्हा किस तरह सफर करता है और दौरान सफर क्या क्या वारदातों कैफियात होती हैं और सफर करने में टाइम स्पेस का क्या अमल दखल है? इंसानी शऊर किसी भी तरह इसे मालूम नहीं कर सकता। यानी ये कैफियत वहमा की है, वहमे के दर्जे की बात हो रही है कि इस लम्हा जो है ये किस तरह सफर कर रहा है लम्हा, और सफर के दौरान उस पर क्या बीतती है, ये कैफियात इंसानी शऊर से मावरा है। किसी तरह भी उसे मालूम नहीं कर सकता कौन? इंसानी शऊर। यानी इन चीजों से वाकफियत के लिए आपको शऊरी सतह से ऊपर उठना है, ला शऊर में दाखिल होना है, ला शऊरी हवास और कैफियात और वारदात से काम लेना है। इसलिए अब क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता कि शऊर का आगाज ही तनाहियत से होता है। यानी जो चीज तनाहियत, यानी कि जिसकी लिमिटेशंस हैं, जो अपने लिमिटीट्यूड में कैद है, वो किसी लिमिटलेसनेस को कैसे समझ सकती है? तो इसलिए शऊर का आगाज ही तनाहियत से होता है। और इंसानी शऊर का आगाज तनाहियत से होने का मतलब यह है कि हर लम्हा जब सफर करता है तो उसके साथ ही दूसरा लम्हा शुरू हो जाता है। यानी तनाहियत से एक के बाद दूसरा लम्हा, दूसरे के बाद तीसरा लम्हा, ये जो है यहां से शौर की बिल्डअप शुरू होती है। अब एक लम्हे से दूसरे लम्हे की तरफ सफर करना, ये है हमारे दुनिया का वक्त, हमारी दुनिया का वक्त। यहां से असर का वक्त शुरू होता है। ये वक्त नस्मय मुफरद से शुरू होता है और नस्मय मुरक्कब पर खत्म हो जाता है, यानी तनाहियत का जो लम्हे हैं वो नस्मय मुफरद, और नस्मय मुफरद से बनने वाली मखलूक को जिन्नात कहते हैं और नस्मय मुरक्कब से बनने वाली मखलूक को इंसान कहा गया, या आदमी, आदम या आदमी की दुनिया। तो ये जो टाइम हमारे यहां चल रहा है ये नस्मय मुरक्कब पे लागू होता है, और ये पीछे से लम्हात किस तरह सफर कर रहे हैं, वो जब मुतगैयर होना शुरू हुए, फिर वो लातनाहियत से जब तनाहियत में आ गए तो नस्मय मुफरद का जोन शुरू हो गया। यानी अब यहां से ये सारे राज खुल गए कि भाई जिन्नात की दुनिया में वक्त क्यों इतना लंबा चौड़ा है और हमारी दुनिया में इतना चौड़ा। वहां 9 साल में बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ 9 माह में पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ 100 साल उम्र चलती है, वहां 900 साल उम्र ज्यादा से भी ज्यादा चलती है। यानी कम अज कम अब देखें ना कितने गुना हुआ, 9 माह और 9 साल, तो 12 गुना का फर्क हुआ। तो ये वक्त जो है ये नस्मय मुफरत से शुरू होता है और नस्मय मुरक्कब पर खत्म हो जाता है। अब दोबारा सुन लीजिए और इस बात को जहन में मजीद वाजे कर लें कि जब इंसानी शऊर रहम, ख्याल और तसव्वुर की तरफ मतवज्जो होता है तो उसका रुख नस्मय मुफरद की तरफ होता है। यानी नस्मय मुफरद से क्या मुराद है, वहम, ख्याल और तसव्वुर का जोन सारा नस्मय मुफरद है। अब आप गौर करें कि कितने वाशगाफ अल्फाज में हमें बता दिया कि नस्मय मुफरद असल में किसे कहते हैं। ये जो वहमे से शुरू होकर ख्याल और ख्याल से तसव्वुर तक का सफर है, ये सारा नस्मय मुफरद है। और जब हम महसूसात की हदूद में दाखिल होते हैं तो शऊर नस्मय मुरक्कब से मुतारिफ होता है। मैं अपने पास से तो नहीं कुछ कह रहा, साफ लिखा हुआ पढ़ रहा हूं कि शऊर नस्मय मुरक्कब से कब मुतारिफ होता है, जब वो महसूसात की हदों में दाखिल होता है। अगर हम महसूस कर रहे हैं किसी चीज को तो गोया हमारा शऊर हमारे नस्मय मुरक्कब की कारस्तानी या उसकी वर्किंग से आशना हो रहा है। तो अब हम यूं कहेंगे कि शऊर के तगैयर से वाकिफ होने का अमल ही शऊर है। गौर करें जरा, शऊर के तगैयर यानी शऊर में जो तब्दीलियां आ रही हैं हमें उन्हीं की इत्तला नहीं है। अगर हम उससे वाकिफ हो जाएं और ये वाकफियत का अमल ही असल में शऊर कहलाता है तो इल्म क्या हुआ, शऊर क्या हुआ, कि शऊर के तगैयर से वाकिफ होने के अमल का नाम शऊर है।